योएल का ग्रंथ और लाउदी किए सातवें दिन के एडवेंटिस्टों की कलीसिया संख्या 22।
नंबर 22। पिछले लेख में हम प्राचीन इसराइल के संदर्भ में विषधर सर्पों की पीढ़ी के चार उल्लेखों में आधे तक पहुंच चुके थे। मत्ती में यूहन्ना और यीशु दोनों फरीसियों और सदूकियों को विषधर सर्पों की संतान कहते हैं। यूहन्ना उस परीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी पहचान तब होती है जब उसने ये सिखाया कि उसके बाद आने वाले यीशु अपना खलिहान पूरी तरह साफ करेंगे। यीशु ने शेबा की रानी और नीनवे का उल्लेख करते हुए न्याय की प्रक्रिया को शामिल करके यूहन्ना की परीक्षण प्रक्रिया में और जोड़ दिया। न्याय चौथी पीढ़ी में होता है और न्याय में एक वर्ग सर्पों के रूप में प्रकट होता है क्योंकि उनका पिता शैतान है। यीशु ने ये मुद्दा भी जोड़ा कि चौथी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है जबकि चिन्ह उनके सामने ही था। मत्ती अध्याय 23 में फरीसियों और सदूकियों पर आने वाले हाय प्रस्तुत किए गए हैं और परख तथा न्याय की प्रक्रिया फिर से अंतिम पीढ़ी से संबद्ध की गई है। अध्याय 22 अध्याय 23 के हाय के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है।
जब फरीसी एकत्र हुए तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? वो किसका पुत्र है?
उन्होंने उससे कहा, दाऊद का पुत्र। वो उनसे कहता है,
तो फिर दाऊद आत्मा में उसे प्रभु कैसे कहता है? ये कहते हुए, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी न बना दूं। यदि दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे है?
और कोई भी व्यक्ति उसे एक भी शब्द का उत्तर नहीं दे सका और उस दिन के बाद किसी ने भी उससे और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। मत्ती 22:41-46।
जब आगे किसी भी प्रकार के लोक संवाद का द्वार बंद हो गया तब यीशु ने अगले अध्याय में 8 हाय घोषित की। 13वीं आयत में ये हाय स्वर्ग के राज्य के द्वार बंद करने के लिए है। स्वर्ग के द्वारों से ही अंतिम वर्षा उंडेली जाती है। ये 8 हाय उन लोगों के बारे में है जो ये दावा करते हैं कि वे उस द्वार को खोलते हैं जिसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता और उस द्वार को बंद करते हैं जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। दर्शन में बहन व्हाइट को ये दिखाया गया कि जो लोग मसीह का अनुसरण करके परम पवित्र स्थान में नहीं गए वे अपनी प्रार्थनाएं उस खाली पवित्र स्थान को भेजते रहे जहां शैतान मसीह होने का ढोंग करते हुए उन्हें ये विश्वास दिलाता रहा कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने पवित्र स्थान को फिर से खोल दिया था और परम पवित्र स्थान को बंद कर दिया था।
बहुत से लोग मसीहवा को अस्वीकार करने और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने में यहूदियों के आचरण को भय से साथ देखते हैं और जब वे उनके शर्मनाक दुर्व्यवहार का इतिहास पढ़ते हैं तो वे सोचते हैं कि वे उनसे प्रेम करते हैं और पतरस की तरह उन्हें इनकार नहीं करते या यहूदियों की तरह उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ाते। परंतु जो परमेश्वर सबके हृदयों को पढ़ता है उसने यीशु के प्रति उस प्रेम की परिदर्शा ली जिसका वे महसूस करने का दावा करते थे। समस्त स्वर्ग ने पहले स्वर्गदूत के संदेश के स्वागत को अत्यंत गहरी रुचि से देखा, परंतु बहुत से लोग जो यीशु से प्रेम का दावा करते थे और क्रूस की कहानी पढ़ते समय आंसू बहाते थे उन्होंने उसके आने के शुभ समाचार का उपहास किया। संदेश को आनंद से ग्रहण करने के बजाय उन्होंने उसे भ्रम घोषित किया। उन्होंने उन लोगों से घृणा की जो उसके प्रकट होने से प्रेम रखते थे और उन्हें कलीसियाओं से बाहर कर दिया। जिन्होंने पहले संदेश को अस्वीकार किया वे दूसरे से लाभान्वित न हो सके, नहीं वे मध्य रात्रि की पुकार से लाभान्वित हुए जो उन्हें विश्वास के द्वारा यीशु के साथ स्वर्गीय पवित्र स्थान के परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार करने हेतु थी। और पहले के दो संदेशों को अस्वीकार कर उन्होंने अपनी समझ को इतना अंधकारमय कर लिया है कि वे तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में जो परम पवित्र स्थान में प्रवेश का मार्ग दिखाता है कोई प्रकाश नहीं देख पाते। मैंने देखा कि जैसे यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वैसे ही नाम मात्र की कलीसियाओं ने इन संदेशों को क्रूस पर चढ़ा दिया है, इसलिए उन्हें परम पवित्र में जाने के मार्ग का ज्ञान नहीं है और वे वहां यीशु की मध्यस्थता से लाभान्वित नहीं हो सकते। यहूदियों की तरह जो अपने निष्फल बलिदान चढ़ाते थे वे उस कक्ष की ओर अपनी निष्फल प्रार्थनाएं भेजते हैं जिसे यीशु छोड़ चुके हैं, और शैतान इस छल से प्रसन्न होकर धार्मिक रूप धारण करता है और इन कहलाने वाले मसीहियों के मनों को अपनी ओर मोड़ देता है। अपनी शक्ति, अपने चिन्हों और झूठे अद्भुत कार्यों के द्वारा काम करते हुए उन्हें अपने जाल में बांध देता है। अर्ली राइटिंग्स 258-261।
14वें पद में विधवाओं के घरों को निगलने और लंबी प्रार्थनाएं करने पर धिक्कार है। 15वें पद का धिक्कार इस बात के लिए है कि वे अपने धर्मांतरितों को अपने से भी दो गुना नरक के पुत्र बना देते हैं। 16वें से 22वें पदों में दुष्ट लोग मंदिर की कसम खाते हैं।
ये सिस्टर वाइट के शब्द नहीं बल्कि प्रभु के शब्द हैं और उसके दूत ने उन्हें मुझे आपको देने के लिए दिए हैं। परमेश्वर आपसे आह्वान करता है कि आप अब उसके उद्देश्यों के विरुद्ध काम न करें। उन लोगों के विषय में बहुत सा निर्देश दिया गया जो अपने को मसीही कहते हैं, जबकि वे शैतान के गुण प्रकट कर रहे होते हैं और भाव, वचन तथा कर्म से सत्य की उन्नति का विरोध करते हुए निश्चय ही उसी मार्ग पर चल रहे हैं जहां शैतान उन्हें ले जा रहा है। अपने हृदय की कठोरता में उन्होंने ऐसा अधिकार हथिया लिया है जो किसी भी प्रकार से उनका नहीं है और जिसका उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। महान शिक्षक कहते हैं, मैं उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा। बै चतल क्रीक में लोग कहते हैं, हम प्रभु का मंदिर हैं, प्रभु का मंदिर हैं, पर वे साधारण आग का उपयोग कर रहे हैं। उनके हृदय परमेश्वर के अनुग्रह से न तो नरम हुए हैं और न ही वश में आए हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेज खंड 13-22-200।
पद 23 और 24 में धिक्कार न्याय, दया और विश्वास योग्यता की उपेक्षा करने पर है। पद 25 और 26 प्याले के बाहर को साफ करने के दिखावे के बारे में है, पर भीतर को नहीं।
यह निधि हमारे पास है, प्रेरित ने आगे कहा, मिट्टी के बर्तनों में, ताकि सामर्थ्य की श्रेष्ठता परमेश्वर की हो, हमारी नहीं। परमेश्वर अपनी सच्चाई निष्पाप स्वर्गदूतों के माध्यम से घोषित कर सकता था, परंतु ये उसकी योजना नहीं है। वो मनुष्यों को, दुर्बलताओं से घिरे हुए मनुष्यों को, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए साधन के रूप में चुनता है। यह अनमोल खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। मनुष्यों के माध्यम से उसकी आशीषें संसार तक पहुंचाई जानी हैं। उन्हीं के द्वारा उसकी महिमा पाप के अंधकार में चमकनी है। प्रेरितों के काम 3-37।
तब पद 27 और 28 दुष्टि को चूने से पुती हुई कब्रें ठहराते हैं और यह यशाया अध्याय 22 के शेबना से जुड़ता है, जहां शेबना उस शानदार कब्र के कारण घमंड कर रहा था जिसे वो बनवा रहा था, परंतु जिसमें वो कभी दफन होने वाला नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने मुंह से निकालकर दूर के खेत में फेंक देने वाला था। वो दूर का खेत बेत एल के झूठे भविष्यद्वक्ष की कब्र द्वारा दर्शाया गया है, जिसने अवज्ञाकारी भविष्यद्वक्ष को उसी कब्र में दफन करा दिया। तब 8वीं हाय कहती है,
हाय तुम पर, हे शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी लोगों, क्योंकि तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो और धर्मियों की समाधियों को सजाते संवारते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं के लहू में उनके सहभागी न होते। इसलिए तुम अपने ही विरुद्ध ये गवाही देते हो कि तुम उन्हीं की संतान हो जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। तो फिर अपने पितरों का नाप पूरा करो। हे सर्पों, हे विषधर की संतान, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं, ज्ञानियों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। उनमें से कुछ को तुम मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को तुम अपने सभागृहों में कोड़े लगाओगे और उन्हें नगर से नगर तक सताओगे, कि तुम पर पृथ्वी पर बहाया गया सब धर्मियों का लहू आए, धर्मी हाबिल के लहू से लेकर बरकिया के पुत्र जकरिया के लहू तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच मार डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस पीढ़ी पर आएंगी। मत्ती 23:31।
इस खंड में उन सर्पों अर्थात विषधर की संतति का न्याय किया जा रहा है। इस खंड में न्याय शेबा की रानी और नीनवे की गवाही पर नहीं, बल्कि हाबिल से लेकर जकरयाह तक के लहू के आधार पर है। चौथी पीढ़ी, जो विषधर कहलाती है, का न्याय प्राचीन इसराइल के बाहरी इतिहास के दो गवाहों और प्राचीन इसराइल के भीतरी इतिहास के दो गवाहों द्वारा किया जाता है। लूका अध्याय 3, चौथी और अंतिम पीढ़ी के विषधरों के विषय में 4 संदर्भों में से अंतिम है, और वो मात्र मत्ती अध्याय 3 का समानांतर है। ये चार संदर्भ ही स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर के घराने की अंतिम न्याय के समय अर्थात चौथी पीढ़ी में एक वर्ग अपना चरित्र शैतान के पुत्र पुत्रियों के रूप में प्रकट करेगा और दूसरा वर्ग परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में। उस परीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत जो विभाजन को आरंभ करती है तब होती है जब वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाला दूत जंगल में पुकार लगाता है। शास्त्र की पवित्र बुनावट में नाम केवल लेबल नहीं बल्कि फुसफुसाई गई भविष्यवाणियां हैं। इतिहास की सतह के नीचे गाए गए दूसरे गीत जो मुक्ति के हृदय को प्रकट करते हैं। जब एडम से नोहा तक के वंशजों के अर्थों को एक कथन में व्यवस्थित किया जाता है तो वो एक ऐसा संदेश उत्पन्न करता है जो वंशावली द्वारा दर्शाए गए इतिहास से मेल खाता है। एडम का अर्थ मनुष्य और सेत का अर्थ नियुक्त, इनोश का अर्थ मरणशील मृत्यु के अधीन और किनान का अर्थ शोक। ईश्वर की स्तुति आशीर्वाद महलालेल के माध्यम से स्वर्ग नीचे उतरेगा जेरेड। स्वर्ग समर्पित या अभिषिक्त इनोश के रूप में नीचे आया जिसने अपने पुत्र मिथ्यूसला जब वो मरेगा यह भेजा जाएगा कि माध्यम से न्याय का संदेश घोषित किया। उसकी मृत्यु पवित्र आत्मा के शक्तिशाली उंडेले जाने का चरम होती जिसका प्रतीक लमैक श्वास का मिथ्यूसला के साथ जुड़ना था जैसे मिडनाइट क्राय दूसरे स्वर्गदूत के साथ जुड़ा। मिथेजिला दूसरा स्वर्गदूत था और लेमैक मिडनाइट क्राय जो नूहा की बाढ़ पर चरम पर पहुंचा। और अधिक संक्षेप में ये नाम घोषित करते हैं। प्रथम आदम के परिणाम स्वरूप मनुष्य नश्वर ठहराया गया दुख और मृत्यु के अधीन, परंतु परमेश्वर की आशीष के द्वारा मसीह ने स्वयं को नीचे आने के लिए समर्पित किया और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा न्याय की घोषणा की जिसके बाद पवित्र आत्मा का शक्तिशाली उंडेला हुआ। ये 10 नाम सुसमाचार के संदेश को समेटते हैं और सृष्टि से लेकर अंतिम वर्षा तक पृथ्वी के इतिहास का निरूपण करते हुए अंततः दूसरे आगमन में परिणति तक पहुंचते हैं। ये प्रतीकवाद जो नामों में छिपा है प्रकाशित वाक्य में अपना समकक्ष पाता है। उत्पत्ति अल्फा वंशावली प्रस्तुत करती है और प्रकाशित वाक्य 7:84 प्यो बंद शेष जन में ओमेगा की पूर्ति प्रकट होती है। जूदा का अर्थ स्तुति है, रूबेन का अर्थ देखो एक पुत्र है, गैड का अर्थ सौभाग्य दल है, अशर का अर्थ आनंदित धन्य है और नाफ्तली का अर्थ कुश्ती है। मनास्से का अर्थ भुलाने वाला है, सिमियोन का अर्थ श्रवण है, लिवी का अर्थ जुड़ा हुआ संलग्न है, इसाकर का अर्थ प्रतिफल है, जेबुलून का अर्थ सम्मान निवास है, जोसेफ का अर्थ वृद्धि है और बेंजामिन का अर्थ दाहिने हाथ का पुत्र है। जो यहूदा के गोत्र के सिंह का अनुसरण करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं और याकूब की तरह परमेश्वर से कुश्ती करने की परीक्षा प्रक्रिया से गुजरते हुए सौभाग्य से धन्य होते हैं। इस संघर्ष के द्वारा उनके पाप उस पवित्रीकरण की प्रक्रिया में भुला दिए जाते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने से उत्पन्न होती है और इससे वे वाचा के संबंध में मसीह से जुड़ जाते हैं। उनका प्रतिफल ये है कि वे मसीह के साथ उसके सिंहासन पर सम्मान सहित वास करें और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर उनका उपयोग अपने राज्य का विस्तार करने के लिए करता है, बाबुल से महान भीड़ को अपने दाहिने हाथ के पुत्रों के रूप में बुलाकर। लेया के 6 पुत्र थे, रूबेन, यहूदा, शिमोन, लेवी, इस्साकार और जबुलून। उसकी दासी जिल्पा, जिसके नाम का अर्थ सुगंधित बूंद है, के 2 पुत्र थे, गाद और आशेर। राहेल के 2 पुत्र थे, यूसुफ और बिन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा का अर्थ संकोची या डरपोक है और उसके पुत्र दान और नप्ताली थे। भविष्य सूचक दृष्टि से यहाँ की वंशावली विचार करने के लिए कई पहलू प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति के 5वें अध्याय में अल्फा और 10 पीढ़ियों के विपरीत ओमेगा के 12 वंशज हैं अपने विशेष भविष्य सूचक तत्वों के साथ। 144,000 में दान का उल्लेख नहीं है और मनसा नश ने अपने भाई एप्रेम का स्थान लिया। उत्पत्ति की अल्फा वंशावली प्रकाशित वाक्य की ओमेगा वंशावली से मेल खाती है, क्योंकि उत्पत्ति उद्धार में मसीह के दिव्य कार्य को दर्शाती है और प्रकाशित वाक्य उन लोगों को चिन्हित करता है जो उस अल्फा भविष्यवाणी की ओमेगा पूर्ति में अल्फा भविष्यवाणी में प्रस्तुत वही प्रतिज्ञा और भविष्यवाणी को पूर्णतः पूरा करते हैं। इन दो रेखाओं का अनुप्रयोग अक्सर धर्मशास्त्री करते हैं, पर कभी भी पंक्ति पर पंक्ति पद्धति के दृष्टिकोण से नहीं। उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्यता की दो वंशावलियां ये दर्शाने के लिए दो गवाहियां देती हैं कि परमेश्वर द्वितीयक स्तर पर भी बोलते हैं। एक भाषा वो लिखित गवाही है जैसी वो दर्ज है, और उसी गवाही के भीतर एक द्वितीयक रेखा प्रतीकात्मक स्तर पर प्रस्तुत की गई है। धर्मशास्त्री सामान्यतः उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में नामों के अर्थों के माध्यम से संप्रेषित संदेश के सतही अवलोकनों से आगे नहीं बढ़ते। वे जो देखते हैं उसे एक नवीनता मानते हैं जो वास्तव में उनकी अपनी मानवीय बुद्धि के विषय में अधिक कहती है, जैसा कि नामों के अर्थों में रूपक देखने की अपनी धर्माभिमानी क्षमता के प्रदर्शन से प्रमाणित होता है। वे इश्माएल के 12 पुत्रों में प्रस्तुत संदेश को कभी नहीं देखते। वे मत्ती और लूका में यीशु की वंशावलियों को सही ढंग से नहीं देखते। वे यहूदा के अंतिम 7 राजाओं और इसराइल के अंतिम 7 राजाओं की वंशावलियां नहीं देखते, न ही यहूदा के पहले 7 राजाओं या इसराइल के पहले 7 राजाओं की। जब मैं कहता हूं कि वे नहीं देखते, तो मेरा मतलब है कि यदि आप गूगल से पूछें कि क्या इन वंशावलियों के बारे में शिक्षाएं हैं, तो उत्तर हाँ होगा। उत्पत्ति में आदम से नूह तक, और हाँ 144,000 के बारे में भी। लेकिन क्या वे उत्पत्ति 11 में अब्राम के 10 वंशजों पर भी यही ढंग अपनाते हैं? नहीं। क्या वे कैन की वंशावली और शेत की वंशावली पर भी यही ढंग अपनाते हैं? हाँ, पर वास्तविक अर्थ से इतने हटकर कि जैसे वे किसी और ही विषय पर हों। वे निस्संदेह मत्ती और लूका में मसीह की वंशावलियों पर चर्चा करते हैं, पर एक बार फिर मूल बात से कोसों दूर रह जाते हैं। आप पूछेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मेरा इरादा इन भविष्य सूचक वंश रेखाओं का एक अवलोकन देने का है, और मैं आरंभ से ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं बाइबिलीय भविष्यवाणी के प्रतीक के रूप में चौथी पीढ़ी के महत्व की पहचान करने का प्रयास कर रहा हूं। इन वंशावलियों का ये अवलोकन उस दृष्टि से सहायक होगा, पर यदि कोई ये समझे कि आगे आने वाली बातों का ये सरल सार ही इन वंश रेखाओं के बारे में समझने के लिए सब कुछ है, तो ये उसकी ओर से लापरवाही होगी। आदम से नूह तक की वंशावली के बाद उत्पत्ति के अध्याय 4 और 5 में हमें वंशावलियों की दो रेखाएं मिलती हैं। ये दोनों रेखाएं कैन के वंशजों और शेत के वंशजों द्वारा दर्शाई गई हैं। आदम से नूह तक की उस वंशावली के विपरीत जो 10 वंशजों का उल्लेख करती है, शेत और कैन की रेखाएं दोनों 8-8 वंशजों का उल्लेख करती हैं। इसी कारण उन्हें 4-4 के दो कालखंडों के रूप में माना जाना चाहिए। शेत और कैन वाचा के प्रतीक है, और कैन उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो यशाया 28 और 29 में मृत्यु की वाचा बांधते हैं, जिसे उमड़ती हुई विपत्ति के समय रद्द कर दिया जाएगा। वे वही हैं जो अपना घर रेत पर बनाते हैं, जो चट्टान पर बनाते हैं। वे जीवन की वाचा करते हैं, जैसा कि प्रथम पत्रस अध्याय 2 में उन लोगों के रूप में दर्शाया गया है जिन्होंने चखा है कि प्रभु भला है, और वे चुनी हुई पीढ़ी हैं। अनेक रेत पर बनाते हैं, पर थोड़े चुने जाते हैं। कैन की वंशावली नामों की सिम्फनी में एक विद्रोही स्वर है, क्योंकि ये नाम व्यर्थ मानवीय महिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वर्ग से प्रहार झेलने के बाद दिशाहीन भटकन की ओर ले जाते हैं। चेतावनी की अनदेखी करते हुए कैन का वंश एक मिथ्या देवत्व की घोषणा करता है जो प्रतिशोधी मानवीय शक्ति के आवरण में लिपटा है, और जिसका प्रतिनिधित्व मानवीय कलाएं करती हैं जो एक लौह संस्कृति गढ़ती है, सुंदर पर हिंसक और आशाविहीन। ये अंतिम कथन नामों से व्युत्पन्न कैन की 8 पीढ़ियों के संदेश का एक संक्षिप्त अवलोकन है। शेत की वंशरेखा एवं अनुग्रह के साथ कैन की वंशरेखा का प्रत्युत्तर देती है। मनुष्य जाति के लिए ठहराई गई मानवीय दुर्बलता के बीच जो परमेश्वर को पुकारते हैं, उनका शोक स्वर्ग के उतरने पर स्तुति में बदल जाता है। वे परख के काल में महिमा की ओर उठने वाले मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलते हैं, जब तक कि आशा की पुकार उद्धार के जल के द्वारा उन्हें विश्राम नहीं दे देती। ये अंतिम कथन शेत की 8 पीढ़ियों में नामों से व्युत्पन्न संदेश का एक अवलोकन है।
8 पीढ़ियों को 4-4 पीढ़ियों के 2 समूहों में बांटने का कारण वाचा के पहले चरण में स्थापित होता है, जब मिस्र में दासत्व की भविष्यवाणी 400 वर्ष के रूप में पहचानी जाती है, और ये भी बताया जाता है कि ये 400 वर्ष चौथी पीढ़ी में समाप्त होंगे, जब पौलुस की गवाही को अल्फा वाचा की भविष्यवाणी में सम्मिलित किया जाता है, तो ये 215 वर्षों के 2 कालखंड प्रस्तुत करती है, जिनमें से प्रत्येक कालखंड 4 पीढ़ियों से बना था। 430 वर्षों में ये 8 पीढ़ियां 215 वर्षों के 2 कालखंडों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहला कालखंड उस अच्छे फिरौन द्वारा दर्शाया जाता है जो यूसुफ को जानता था। 215 वर्ष बाद एक नया फिरौन हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। तब 4 पीढ़ियों का अगला समूह आरंभ हुआ। 8 पीढ़ियां जिन्हें 2 अवधियों में समान रूप से विभाजित किया गया है और 4-4 पीढ़ियों की अपनी अपनी विशिष्ट अवधि के रूप में चिह्नित किया गया है। कैन और सेट की 8-8 पीढ़ियों को उसी ढंग से लागू करने का समर्थन करती हैं। जब वो अनुप्रयोग किया जाता है तो सेट की 8 पीढ़ियां कैन की 8 पीढ़ियों से मेल खाती हैं। कैन उन बहुतों का प्रतिनिधित्व करता है जो पशु का चिन्ह प्राप्त करते हैं और सेट उन थोड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर की मुहर प्राप्त करते हैं। कैन मानवता का चिन्ह है और सेठ मानवता तथा दैवत्व के संयोजन का चिन्ह है। ये नूह की वाचा के संदर्भ में है, जबकि यूसुफ और मूसा की वंश रेखा अब्राम की वाचा के संदर्भ में है। फिर अध्याय 11 में चुने हुए लोगों की वंशावली शेम से अब्राम तक के 10 नामों द्वारा प्रस्तुत की गई है। अध्याय 11 बाबेल की मीनार की कथा है, पर ये चुने हुए लोगों की वंशावली भी है जिसका प्रतिनिधित्व अब्राहम करता है। अध्याय 11 उन चुने हुए लोगों का परिचय कराता है जिन्हें परमेश्वर के साथ त्रिस्तरीय वाचा में प्रवेश करना था। तीसरा और अंतिम चरण अध्याय 22 में इसहाक का बलिदान था। अध्याय 11 अल्फा आरंभ है और अध्याय 22 ओमेगा समापन है। नामों के अर्थों में परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए जिस विश्वास की आवश्यकता है, वही विश्वास उसके वचन के संख्यांकन में उसकी वाणी सुनने के लिए भी आवश्यक है। वंशावली का एक ऐसा अनुप्रयोग जिसे धर्मशास्त्रियों ने नहीं अपनाया है, इस्लाम के प्रतीक इश्माएल की वंशावली है।
और इश्माएल के पुत्रों के नाम उनके नामों के अनुसार उनकी वंशावलियों के अनुसार ये है। इश्माएल का पहला उठा नेबायोत और केदार और अदबील और मिबसाम और मिशमा और दूमा और मस्सा, हाद और तेमा, यतूर, नाफिश और केदेमा। ये इश्माएल के पुत्र हैं और ये उनके नाम हैं, उनके नगरों के अनुसार और उनके दुर्गों के अनुसार, अपनी अपनी जातियों के अनुसार 12 सरदार। उत्पत्ति 25:13-17।
जब इन 12 नामों की परिभाषाएं एक कथन के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, तो वो इस प्रकार पढ़ा जाता है। भविष्य सूचक रूप से इश्माएल के वंशज एक फलदाई श्याम वर्ण लोग हैं जो योद्धाओं के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु 11 अगस्त 1840 को और उसके बाद 11 सितंबर 2001 को उन पर ऐतिहासिक और भविष्य सूचक रूप से आघात पहुंचा। बाइबल इतिहास में उन्हें पूर्व के पुत्र कहा जाता है। उनकी उत्पत्ति अरब से हुई, जहां सुगंधित मसाले उगते हैं जो हिब्रू पवित्र स्थान की विधियों में प्रयुक्त होते थे। असैसिन्स शब्द इस्लामी इतिहास से व्युत्पन्न है और उस मृत्यु का द्योतक है जो मौन में कराई जाती है। क्रूसेड्स के समय इस्लाम ने कैथोलिक यूरोप को आवेष्टित किया, चारों ओर से घेर लिया और घेराबंदी कर दी, परंतु बाद में उन पर लगाए गए संयम ने 1840 से 1844 तक के नवोद्धार के आगमन को चिह्नित किया और साथ ही नौगरड़ से लेकर रविवार के कानून के संकट तक भी। इश्माएल के पुत्रों के 12 नामों की परिभाषाएं पूर्ववर्ती कथन में सभी गाढ़े अक्षरों द्वारा दर्शाई गई हैं। इश्माएल की वंश रेखा के 12 नाम यदि सूची में स्वयं इश्माएल को भी शामिल करें तो कुल मिलाकर 13 हो जाते हैं। 13 विद्रोह का प्रतीकात्मक अंक है और यही हागर ने किया, जिसके कारण अब्राहम ने हागर और इश्माएल को बाहर निकाल देने की अनुमति दी। पौलुस उसी घटना का उपयोग ये वर्णन करने के लिए करता है कि किस प्रकार प्राचीन इसराइल को परमेश्वर की वाचा के लोगों के रूप में निकाल दिया गया, उसी समय जब वो अपनी मसीही दुल्हन के साथ एक वाचा स्थापित कर रहा था।
क्योंकि लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र थे, एक दासी से और दूसरा स्वतंत्र स्त्री से। पर जो दासी से था वो शरीर के अनुसार जन्मा, पर जो स्वतंत्र स्त्री से था वो प्रतिज्ञा से जन्मा था। ये बातें रूपक है, क्योंकि ये दो वाचाएं हैं, एक सीने पर्वत से जो दासता को जन्म देती है, ये आगार है, क्योंकि ये आगार अरब देश में सीने पर्वत है और वर्तमान यरूशलेम के तुल्य है, और वो अपने बच्चों सहित दासता में है। परंतु जो ऊपर का यरूशलेम है वो स्वतंत्र है, और वही हम सब की माता है। क्योंकि लिखा है, हे बांझ जो जन्म नहीं देती आनंद कर, हे जिसने प्रसव पीड़ा नहीं सही उछल और पुकार, क्योंकि उजाड़ स्त्री के बच्चे उस स्त्री से जिसका पति है कहीं अधिक हैं। अब हे भाइयों, हम भी जैसे इसहाक था प्रतिज्ञा की संतान है, परंतु जैसे उस समय जो शरीर के अनुसार जन्मा हुआ उसने आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताया, वैसा ही अब भी है। तो भी पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी से और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ वारिस साथ न होगा। अतएव हे भाइयों, हम दासी की संतान नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के हैं। गलातियों 4:22-31।
इश्माएल इस्लाम का प्रतीक है और हाजिरा इश्माएल की माता मृत्यु की वाचा की कलीसिया का प्रतीक है। इसहाक ईसाई धर्म का प्रतीक है और सारा जीवन की वाचा की कलीसिया का प्रतीक है। इसी कारण इश्माएल के 12 पुत्र थे, क्योंकि 12 परमेश्वर की वाचा के लोगों का प्रतीक है और इस्लाम परमेश्वर की वाचा के लोगों का एक नकली प्रतिरूप है। सुसमाचारों में मसीह की दो वंशावलियां हैं, एक मत्ती में और दूसरी लूका में।
और याकूब ने यूसुफ को उत्पन्न किया जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जिसे मसीह कहा जाता है। सो अब्राहम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हुई, और दाऊद से बाबुल में बंधुआई तक 14 पीढ़ियां, और बाबुल में बंधुआई से मसीह तक 14 पीढ़ियां। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी और उनके एक साथ रहने से पहले वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। मत्ती 1:16-18।
मत्ती की वंशावली 14:14 के 3 समान कालखंडों की पहचान करती है, जो मिलकर 42 का एक कालखंड बनाते हैं। वाचा के इतिहास में मूसा अल्फा है और उसी के संबंध में मसीह है ओमेगा है। मूसा ये भविष्यद्वाणी करता है कि मसीह है अपने ही समान होगा। मूसा के 120 वर्ष के जीवन में 40-40 वर्षों के 3 कालखंड थे। मूसा के जीवन के प्रत्येक 40 वर्षीय कालखंड को जब रेखा पर रेखा रखकर देखा जाए तो वो कादेश पर समाप्त होता है, जो 1800-1363 और रविवार के कानून का प्रतीक है। मसीह के 3 कालखंड दाऊद, बाबुल की बंधुआई और क्रूस पर अपने लहू से वाचा की पुष्टि करने पर समाप्त होते हैं। दाऊद रविवार के कानून के समय विजयी कलीसिया के उठाए जाने का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरी रेखा रविवार के कानून पर मूर्ख कुमारियों के बाबुल ले जाए जाने की पहचान कराती है। तीसरा कालखंड क्रूस पर समाप्त होता है, जो फिर से रविवार के कानून का प्रतिरूप है, जहां मसीह 144,000 के साथ अब्राहम की वाचा और महान जन समूह के साथ नूह की वाचा की पुष्टि करता है। जब इन दो रेखाओं को एक दूसरे पर रखा जाता है तो जो समझ में आता है वो अद्भुत है। मूसा के 120 वर्ष नूह के 120 वर्षों से जोड़ते हैं, और मसीह की 42 पीपड़ियां रविवार के कानून के समय मसीह विरोधी के प्रतीकात्मक 42 महीनों के शासन से जुड़ती है।
और प्रभु ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य के साथ सदैव विवाद नहीं करेगी, क्योंकि वो भी देह है, तो भी उसके दिन 120 वर्ष होंगे। उत्पत्ति 6:3।
मत्ती द्वारा दी गई वंशावली जो अब्राहम की वाचा पर बल देती है, के साथ साथ लूका द्वारा प्रस्तुत मसीह की वंशावली सृष्टि तक जाती है और इस प्रकार उस जीवन की वाचा पर बल देती है जिसे आदम ने अदन में तोड़ा। लूका की वंशावली यीशु से प्रारंभ होती है और उनकी वंशावली को पीछे की ओर लेते हुए सीधे आदम तक पहुंचती है, जिसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। ये क्रम परिपूर्ण दूसरे आदम पर समाप्त होता है और परिपूर्ण पहले आदम से आरंभ होता है। पहले आदम से दूसरे आदम तक 57 पीढ़ियां बताई गई हैं। शास्त्र की वंशावलियां सत्य की रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमने अभी ऐसी कई वंशावली रेखाओं की पहचान की है जो किसी सत्य की स्थापना के लिए आवश्यक साक्षियों की संख्या से बहुत आगे बढ़ती है। ये वंशावली रेखाएं ऐतिहासिक पूर्तियों और भविष्यवाणियों का स्वर समेटे हुए हैं और इनमें पलमोनी अर्थात रहस्यों के अद्भुत गणनाकर्ता का स्वर भी है, क्योंकि रेखाओं में रखी गई संख्यात्मक पहेलियां एक दूसरा स्वर प्रदान करती हैं। ये दोनों स्वर एक तीसरे स्वर के साथ सुनाई देते हैं, अद्भुत भाषाविद का स्वर जिसने सब कुछ रचा है और सब पर नियंत्रण रखता है, जिनमें लोगों, स्थानों और वस्तुओं के नाम भी शामिल है। जब यूहन्ना अपने पीछे की आवाज को देखने के लिए मुड़ा तो वो अनेक जलधाराओं की सी आवाज थी, और जब दानियेल को वही दर्शन हुआ तो उसकी आवाज एक विशाल जनसमूह की। धर्म ग्रंथों का प्रत्यक्ष संदेश उस संदेश में पाए जाने वाले नाम और संदेश के भीतर का क्रमांकन, ये तीनों एक ही अंश में तीन आवाजें हैं। जब आप तीन आवाजों वाली एक पंक्ति लेकर उसे एक समांतर पंक्ति के ऊपर रखते हैं तो तीन आवाजें अनेक आवाजें बन जाती हैं।
और सिंहासन से एक आवाज आई जो कहती थी, हे उसके सब दासों और जो उससे डरते हो, छोटे और बड़े, हमारे परमेश्वर की स्तुति करो। और मैंने मानो एक बड़ी भीड़ का स्वर, बहुत से जलों की ध्वनि और शक्तिशाली गर्जनाओं की ध्वनि सुनी, जो कह रहे थे, हल्लेलुया, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर राज करता है। प्रकाशित वाक्य 19:5-6।
कुछ सबसे महत्वपूर्ण पांचावलियां इसराइल के राजाओं से संबंधित है। इसराइल अर्थात उत्तरी राज्य के पहले 7 राजाओं की कड़ी अहाब, इजबेल और एलिया पर समाप्त होती है, और इस प्रकार वह रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तरी गोत्रों के अंतिम 7 राजाओं की रेखा रविवार के कानून से आरंभ होकर मानव कृपाकाल के अंत पर समाप्त होती है, जब दानियेल 12 में मीकाएल खड़ा होता है। यहूदा के पहले 7 राजा रविवार के कानून से लेकर मीकाएल के खड़े होने तक का इतिहास दर्शाते हैं, और अंतिम 7 राजा उस इतिहास को चिन्हित करते हैं जो रविवार के कानून तक ले जाता है। 2 वंशावली रेखाएं हैं, दोनों में एक अल्फा इतिहास और एक ओमेगा इतिहास है। अल्फा इतिहास 9:11 से रविवार के कानून तक की अवधि है, और ओमेगा अवधि रविवार के कानून से कृपाकाल के अंत तक की है। इसराइल के पहले 7 राजा यहूदा के अंतिम 7 राजाओं से मेल खाते हैं, और इसराइल के अंतिम 7 राजा यहूदा के पहले 7 राजाओं से मेल खाते हैं। हम अगले लेख में जारी रखेंगे।
अंत तक अडिग रहो। प्रकाशित वाक्य अंगक वार का अंग तू उद्धृत। संपूर्ण बाइबल एक प्रकाशन है, क्योंकि मनुष्यों के लिए होने वाला सारा प्रकाशन मसीह के द्वारा आता है और सब कुछ उसी में केंद्रित है। परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, हम सृष्टि और मुक्तिदान के द्वारा उसी के हैं। मसीह पात्मोस के द्वीप पर निर्वासित यूहन्ना के पास आए ताकि उसे इन अंतिम दिनों के लिए सत्य दे और उसे वो दिखाएं जो शीघ्र ही होना है। यीशु मसीह दिव्य प्रकाशन के महान न्यासी हैं। उसी के द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है कि इस पृथ्वी के इतिहास के समापन दृश्यों में हमें क्या देखना है। ये प्रकाशन परमेश्वर ने मसीह को दिया और मसीह ने वही यूहन्ना को प्रकट किया। यूहन्ना, प्रिय शिष्य, इस प्रकाशना को प्राप्त करने के लिए चुना गया था। वो प्रथम चुने गए शिष्यों में अंतिम जीवित बचे थे। नए नियम की व्यवस्था के अंतर्गत उसे वैसा ही सम्मान दिया गया था जैसा पुराने नियम की व्यवस्था के अंतर्गत भविष्यवक्ता दानियेल को दिया गया था। यूहन्ना को दिया जाने वाला ये निर्देश इतना महत्वपूर्ण था कि मसीह स्वयं स्वर्ग से आए ताकि वे इसे अपने सेवक को दें और उसे ये आज्ञा दें कि इसे कलीसियाओं को भेज दें। ये निर्देश हमारे सावधान और प्रार्थनापूर्ण अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब पवित्र आत्मा की शिक्षा के अधीन न रहने वाले लोग झूठे सिद्धांत लेकर आएंगे। ये लोग ऊंचे पदों पर रहे हैं और उनके पास पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। वे स्वयं को ऊंचा उठाना चाहते हैं और समस्त व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने हमें विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूहन्ना को आदेश दिया कि वो इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दृश्यों में जो घटित होने वाला है उसे एक पुस्तक में लिख दे। समय बीत जाने के बाद परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य वर्तमान सत्य के बहुमूल्य सिद्धांत सौंपे। ये सिद्धांत उन्हें नहीं दिए गए थे जिन्होंने पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश देने में कोई हिस्सा नहीं लिया था। वे उन कार्यकर्ताओं को दिए गए थे जिन्होंने आरंभ से ही इस कार्य में भाग लिया था। जिन्होंने इन अनुभवों से होकर गुजरे हैं उन्हें उन सिद्धांतों के प्रति चट्टान के समान अडिग रहना है जिन्होंने हमें सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बनाया है। उन्हें परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने वाले बनना है, गवाही को बांधना है और उसकी व्यवस्था को उसके चेलों के बीच मुहर करना है। जिन लोगों ने बाइबल की सच्चाई की नींव पर हमारे कार्य की स्थापना में भाग लिया है, जो उन मार्ग चिन्हों को जानते हैं जिन्होंने सही पथ दिखाया है, उन्हें सबसे अधिक महत्व के कार्यकर्ताओं के रूप में माना जाना चाहिए। उनके सुपुर्द की गई सच्चाइयों के विषय में वे अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल सकते हैं। इन व्यक्तियों को अपनी आस्था को अविश्वास में बदलने नहीं देना है। उन्हें तीसरे स्वर्गदूत का ध्वज अपने हाथों से छीने जाने नहीं देना है। उन्हें अपने विश्वास की जो प्रारंभिक दृढ़ता थी उसे अंत तक थामे रखना है। प्रभु ने यह घोषित किया है कि जैसे ही हम अंतिम कार्य में प्रवेश करते हैं बीते हुए इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा। इन अंतिम दिनों के लिए जो भी सत्य उन्होंने दिया है उसे समस्त संसार में प्रचारित किया जाना है। हर उस स्तंभ को जिसे उन्होंने स्थापित किया है सुदृढ़ किया जाना है। अब हम उस नींव से हट नहीं सकते जो परमेश्वर ने स्थापित की है। अब हम किसी नए संगठन में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि इसका अर्थ सत्य से धर्म त्याग होगा। चिकित्सा मिशनरी कार्य को उन सभी बातों से शुद्ध और निर्मल किया जाना चाहिए जो परमेश्वर की प्रजा के पिछले अनुभव पर विश्वासियों के विश्वास को कमजोर करती हैं। एदन, सुंदर एदन, पाप के प्रवेश से अपवित्र हो गया। अब आवश्यकता है कि उन पुरुषों के अनुभवों का फिर से वर्णन किया जाए जिन्होंने आरंभ में हमारे कार्य की स्थापना में भूमिका निभाई थी। समय समय पर हम संसार के महान पुरुषों के निधन के समाचार पढ़ते हैं। उनका समय अचानक मानो एक ही पल में आ जाता है। कई जिन्हें स्वस्थ समझा जाता है भोज के बाद ही मर जाते हैं, या अपनी ही उन्नति के लिए स्वार्थी योजनाएं रच लेने के बाद। तब वचन निकलता है, वह अपनी मूर्तियों से जा मिला है, उसे छोड़ दो। इसका अर्थ है कि प्रभु अब उसे हानि से नहीं बचाते। अचानक मृत्यु आ जाती है और उसके जीवन कार्य का मूल्य क्या रह जाता है? उसका जीवन विफल रहा है, वह वृक्ष गिर पड़ता है, क्योंकि जो शक्ति उसे संभाले हुए थी वह उसे उसकी मूर्ति परस्ती की भेंट चढ़ने के लिए छोड़ देती है। पुरुष और महिलाएं कुछ आनंद पाने की खोज में तल्लीन हैं। वे अपनी आत्माएं व्यर्थ ही बेच देते हैं और परमेश्वर अपनी दीर्घ सहिष्णुता वापस ले लेते हैं। उन्हें उनकी पसंद पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो वर्तमान सत्य पर विश्वास का अंगीकार करते हुए अपनी आस्था को गिरा चुके हैं और प्रकाश में चलने से इनकार कर चुके हैं। अब कौन अपने स्वार्थी सांसारिक सिद्धांतों को त्याग देगा? अब कौन आत्मा के मूल्य को समझने का प्रयास करेगा? यदि मनुष्य समस्त संसार को प्राप्त कर ले और अपनी ही आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ? या अपनी आत्मा के बदले मनुष्य क्या देगा? क्या आप जीवन की रोटी और उद्धार के जल के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या आप उन आत्माओं के मूल्य को समझते हैं जिनके लिए मसीह ने प्राण दिए? जिन्हें ईसाई माना जाता है, क्या वे अपने विश्वास के अंगीकार के अनुरूप जीवन जी रहे हैं? क्या वे आत्मा के मूल्य के प्रति सजग हैं? क्या वे सत्य की आज्ञाकारिता के द्वारा अपनी आत्माओं को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं? पांडुलिपि प्रकाशन, खंड 20, 1500-1516।